ये दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले साइड जो गरीबों की बस्ती थी और उनके खेत थे वहां ले जाते हैं और उस बेटे के साथ कुछ दिन गरीबों के बीच में रहते हैं और फिर वापस आते हैं। पिता सोचता है कि अब बेटे को शायद पता चल गया होगा कि दुनिया में कितनी गरीबी है और कैसे वो लोग जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। वो पिता अपने बेटे से पूछता है कि तुमने क्या सीखा, क्या देखा। तो बेटा कहता है, मैंने ये देखा कि हम लोग पास आंगन है और उनके पास बड़ा सा खेत है। मैंने ये देखा कि हमारे पास नौकर है जो हमारे लिए काम करते हैं और उनके पास वो स्वयं काम करते हैं। मैंने ये देखा हमारे पास लाइट्स है, उनके पास सितारे हैं। मैंने ये देखा कि हमारे पास सुरक्षा के लिए ये दीवारें हैं, उनके पास सुरक्षा के लिए उनके दोस्त हैं, मित्र हैं। वो कहता है, मैंने ये देखा हमारे पास तालाब है, उनके पास नदियां बहती है। वो कहता है, हम भोजन खाते हमारे लिए बनाने वाला कोई और है, वो खुद भोजन बनाते हैं। और वो कहता है, पिताजी मैंने ये देखा कि हम लोग मशीन की बनी हुई चाय और कॉफी पीते और वो लोग खुले आकाश में चूल्हे पर चाय बनाते हैं और मुझे लगता है हाउ पुअर वी आर, और मुझे लगता है हम कितने गरीब हैं और वो कितने अमीर हैं। ये उस लड़के का उत्तर था जो पिता चाहता था ये जतलाने कि हम कितने अमीर हैं और वो कितने गरीब। बच्चा कहता है आज मैंने जाना पिताजी हम कितने गरीब हैं और वो लोग कितने अमीर हैं। और वास्तव में सुख का संबंध वस्तुओं से नहीं, सुख का संबंध पोजीशन से नहीं, सुख का संबंध उन सब चीजों से शायद नहीं है जिनको हम समझते हैं। सुख कोई और चीजों में है, सुख कुछ और बातों में है जिनके बारे में शायद हमने कभी सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं। तो जैसे उस बेटे ने कहा चाय के विषय में, हम सोच रहे थे कि चाय भी बड़ी अद्भुत चीज है। आप सब ने जेन फिलॉसफी सुनी होगी। जेन फिलॉसफी बुद्धिज्म का एक भाग है और उसमें चाय को बहुत महत्व दिया हुआ है। वहां की जो मोनेस्ट्रीज आश्रम है वहां पर एक टी हॉल होता है जहां पर टी सेरेमनी होती है। वहां पर गेस्ट को बुलाया जाता है और नियम होता है जूते चप्पल सब कुछ बाहर रखे, अंदर आए, मौन में बैठे। चाय बनाने वाला चाय बनाएगा और वो भी मौन में, और जो लोग चाय पिएंगे वो भी साइलेंट मेडिटेशन में, क्योंकि चाय का संबंध जोड़ा गया है अवेयरनेस से। चाय कैसी खोजी गई इसके बहुत सारे इतिहास है। कोई एक बुद्धिस्ट, एक बौद्ध भिक्षु बैठा था तपस्या में और 7 साल उसको तपस्या करने की, 5वें साल में कहा जाता है जब उसको बहुत भूख लगी तब उसने वो पत्ते लिए और उसे बहुत पसंद आए और उसकी नींद उड़ गई और वो तपस्या करते रहा, वहां से उसकी खोज हुई। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं टी की। टी कैसे आया चीन से भारत और फिर भारत से कैसे सब जगह फैला, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वो फैक्ट्री चालू की, और बहुत सारी बातें हैं। उन सब बातों में हम नहीं जाएंगे। आज कुछ ऐसी गहरी बातों की हम चर्चा करेंगे, केवल चर्चा नहीं परंतु अनुभव भी। जैसे कहा टी अर्थात अवेयरनेस। जब कोई गुरु उस फिलॉसफी में अपने शिष्य को टी देता है अर्थात वो उसकी चेतना को जागृत करता है, जगाता है, आध्यात्मिक जागृति, एनलाइटनमेंट, क्रांति। एक दूसरी छोटी कहानी है जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी जो कि अभी बहुत सक्सेसफुल, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई कुछ बन गया, एक बार सब लोग दोस्त मिलते हैं जो बचपन के दोस्त थे और जिन्होंने पढ़ाई साथ में की थी, और वो अपने प्रोफेसर से मिलने जाते हैं जिन्होंने कभी उनको पढ़ाया था, और उनके घर में जाकर उनसे सारी जिंदगी भर की तकलीफों की चर्चा करते हैं कि जीवन में कैसा संघर्ष है, कितनी लड़ाई है, कितना इसमें खेचातान है, और कैसे हम दिन रात सुख के पीछे भागते हैं परंतु हाथ में कुछ भी नहीं आता है, इतना सब कुछ पा लिया, इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर है परंतु फिर भी ये दुख, ये पीड़ा, ये दर्द, ये वेदना, ये संघर्ष, ये स्ट्राइफ क्यों। जब इस तरह की वो चर्चा कर रहे होते हैं वो प्रोफेसर उठते हैं और किचन में जाते हैं, चाय बनाते हैं और अलग अलग प्रकार के कप, पोर्सिलिन कोई ग्लास का या अलग अलग प्रकार के, कोई बहुत महंगे कोई सस्ते, वो चाय की केतली और वो सारे कप बाहर लेके आते हैं और कहते हैं सर्व योरसेल्फ, आप लोग खुद ले लो। सब लोग अपने अपने कप ढेर सारे कप होते हैं, चाय लेते हैं। वो प्रोफेसर एक बात नोटिस करता है और कहता है, देखो तुम सब लोगों ने वो कप लिए जो बहुत अच्छे थे, बहुत डेकोरेटिव थे, बहुत महंगे थे, और वो सारे कप छोड़ दिए जो सस्ते थे और जो दिखने में ठीक नहीं थे। शायद इसका संबंध जीवन से है। वो जो चाय है वो जिंदगी है, वो जीवन है, और वो जो सारे कप है वो पद है, पोजीशन है, संबंध है, रिलेशनशिप्स है, पैसा है, घर है, संपत्ति है, नाम है, मान है, शान है। वास्तविक इन सब का भी महत्व है, परंतु मूल महत्व है उस चाय का। वो किस में ली जा रही है, अगर उसी के ऊपर फोकस किया जाए तो शायद मूल चीज रह जाती है। और इसलिए सुख की जो कामना है, सुख की जो अभिप्सा है, सुख की जो चाह है, वो रह जाती है और हम कुछ और बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या हम करें कि जिससे ये जीवन आनंदित हो जाए, सुखी हो जाए? और हर व्यक्ति की कामना सुख की है, प्रेम की है, आनंद की है, परंतु एक मूलभूत भूल मनुष्यता से हुई है कि हमने इन सुखों को संसार में ढूंढा। इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, द सोल इज इन्फिनिट एंड द इन्फिनिट कैन नॉट बी सैटिस्फाइड बाय एनीथिंग विच इज फाइनाइट। आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास केवल अनंत ही बुझाएगा। संसार की जो बातें हैं, संसार की जो चीजें हैं, वो आदि अंत वाली है, वो कभी भी आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती। इसलिए शरीर के सारे सुख उसको देने के बाद में भी आत्मा प्यासी रह जाती है, भूखी रह जाती है, मृत्यु शैया पर रहती है, परंतु फिर भी वंस मोर की कामना से ही व्यक्ति शरीर छोड़ता है, क्योंकि वह सुख वहां ढूंढ रहा था जहां वो है नहीं। तो जैसे कहा, ये जो टी है, इसका आध्यात्मिक अर्थों में जागरण से संबंध कहा गया है। ऐसा क्या करें जो जीवन आनंदित हो जाए? तो हम ये कहेंगे कि आप सब लोग जो यहां आए हैं, इस संस्था में आए हैं, इस स्थान पर आए, इस परिसर में आए हैं, आपने ये अनुभव किया होगा कि यहां आते ही यहां कोई एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, ऐसी एक पावर है कि यहां आते ही जो संसार का तनाव था, जो टेंशन था, वो अपने आप कम हो गया। किसी ने हमसे कुछ कहा नहीं, किसी ने हमसे कुछ पूछा नहीं, हम यहां आए और यहां के प्रकंपन और यहां का वायुमंडल और यहां का वायुमंडल और वातावरण नहीं, कुछ तो अंदर किया है। वो क्या किया है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, परंतु अंदर से कोई शांत हुआ है कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए। तो हम ये कहेंगे कि आप यहां पर एक पार्टी मनाने आए हैं, और ऐसी एक अलौकिक पार्टी आज हम मनाएंगे, एक ऐसी टी पार्टी। चाय सभी पीते हैं? कौन कौन पीता है? हम आज जिस विषय पर बोलने जा रहे हैं ये थोड़ा विरोधाभास है, क्योंकि हमने अपने जीवन में कभी भी चाय नहीं पी है, यहां तक कि हमने कभी टेस्ट भी नहीं की है। और जिस टी की हम चर्चा करने वाले हैं वो कुछ और है, वो कुछ अद्भुत है। जेन मास्टर जोसु नाम का एक व्यक्ति था, बड़ा ही मैच्योर्ड। उनके आश्रम में एक विद्यार्थी, नया एक शिष्य आता है, वो पूछते हैं, क्या तुमने मुझे पहले देखा है? वो कहता है, नहीं। वो कहता है, देन हैव अ कप ऑफ टी। एक दूसरे शिष्य से पूछते हैं, हैव यू सीन मी बिफोर? वो कहता है, हां। मास्टर कहता है, देन हैव अ कप ऑफ टी। वहां का जो इंचार्ज मैनेजर होता है आश्रम का, वो पूछता है कि आपने दोनों से एक ही प्रश्न पूछा और दोनों के उत्तर तो अलग अलग थे। वो मास्टर उस मैनेजर से पूछता है कि तुम यहां कब से हो? वो कुछ उत्तर देता है और वो कहता है, देन हैव अ कप ऑफ टी। कहानी यही पूरी हो जाती है। इस छोटी सी कहानी का ज़ेन फिलॉसफी में बड़े बड़े अर्थ निकाले जाते हैं, क्योंकि जो बहुत सिंपल होता है उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, और जो डिफिकल्ट होता है उसके हम टुकड़े कर देते हैं, समझ में आ जाता है। एक कमरे में दो लोग हैं, एक को पूछा जाए तुम कौन हो, वो ये कह सकता है मैं तुम नहीं मैं कुछ और हूं। पर अगर कमरे में अकेला ही हो व्यक्ति, उसको पूछा जाए तुम कौन हो, उत्तर कठिन है देना। सभी से वो एक ही प्रश्न पूछता है, देन हैव अ कप ऑफ टी। ये जो टी है इसका अर्थ है जागरण से, एनलाइटनमेंट से। तो ये जो स्पिरिचुअल टी पार्टी है, आप सब लोग तैयार हो जाइए इस टी पार्टी के लिए। टी कितने प्रकार की होती है संसार में, कौन कौन सी टी होती है? ग्रीन टी, हर्बल टी, इंडियन टी, चाइना टी, हाइब्रिड टी, बहुत सारी टी होती है। इस क्लास में हम 21 प्रकार की अलग अलग टी, टी शब्द आया है टा, चा से, एक चा नाम का पर्वत था इसलिए चीन में उसे चा, हिंदी में चाय, चा, इंग्लिश में टी, ऐसे अलग अलग अर्थ हुए उसके, और वो भारत भर में और विश्व भर में फैल गया। इस क्लास में हम देखेंगे ऐसे वो कौन सी टी है जो हमको अपने जीवन में धारण करनी है। एक ऐसी पार्टी जीवन को बना दे, या ऐसी पार्टी जीवन में हो जिसमें ये सारे 21 प्रकार के टी हम शामिल कर दे। सबसे पहला टी कौन सा होगा? एनी गेस, एनी गेस? हाँ, तो उसमें टी कहाँ है? मिल्क टी। अच्छा, सबसे पहला टी है एबिलिटी। शायद हमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं कि ये भी टी हो सकता है, पर इस टी पार्टी में हम ऐसे ही सारे टी की पार्टी करेंगे। एबिलिटी अर्थात क्षमता, और जैसे हमने कहा हमारा वास्तविक परिचय ये शरीर नहीं परंतु आत्मा है, और आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम चाहे और वो हम नहीं कर सके, केवल हमने अपनी शक्तियों को नहीं जाना है, नहीं पहचाना है। यदि मन को देखो तो दो भाग है उसके, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस 1/9 है, कॉन्शियस केवल 1 पार्ट है। जैसे कोई आइसबर्ग हिमखंड है जो नीचे दबा हुआ है, वो सबकॉन्शियस माइंड है, उस सबकॉन्शियस माइंड में अनंत पावर है, अनंत शक्तियां है। हमारी जो एबिलिटीज है, हमारी जो कैपेसिटीज है बहुत ज्यादा है, परंतु कितना हमने उसको यूज किया है। इस संसार में ऐसे इतने लोग हुए हैं महान जिन्होंने कम समय में बहुत कुछ करके दिखा दिया। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना है, द माउंटेन मैन? क्या कर दिया उसने? लोगों ने हंसी उड़ाई, इतना बड़ा पर्वत छन्नी और हथौड़ा लेके तोड़ा, सबने हंसी उड़ाई, तुम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कोई एक प्रेरणा हुई, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई क्योंकि हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सके, बीच में पहाड़ था इतना बड़ा, उसने सोचा इस पहाड़ को मैं तोड़ दूंगा, और रात भर तोड़ते रहता था, 30-40 साल तक तोड़ता, और आखिर वो कर दिखाया। ये पावर कहां से आई? ये पावर थी आत्मा की पावर, ये पावर थी आत्मा की शक्ति, एबिलिटी। और जब आत्मा की पावर के साथ परमात्मा की पावर जुड़ जाती है तब हमसे शक्तिशाली संसार में कोई नहीं होता है। केवल हमें इस माइंड को, इस मन को शार्प करना है। अब्राहम लिंकन से किसी ने पूछा था यदि आपको 6 घंटे दिए जाए एक झाड़ को काटने के लिए आप क्या करोगे? उन्होंने कहा था आई विल स्पेंड फर्स्ट 4 आवर्स इन शार्पनिंग द एक्स। पहले 4 घंटे मैं क्या करूंगा? कुल्हाड़ी की धार को तेज कर दूंगा, और फिर एट वन गो कट इट। पावर्स अनंत है, हमको अपनी एबिलिटीज को जानना है, अपनी एबिलिटीज को समझना है, क्योंकि हमारी शक्तियां इस समय बिखरी हुई है। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, इफ आई हैम गिवन अ चांस टू बिकम अ चाइल्ड अगेन, आई विल फर्स्ट मास्टर द आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड देन विद दैट पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट वन गो मास्टर ऑल द नॉलेज ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट एवर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. यदि मुझे फिर से बच्चा बनाया जाए, मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, इस एकाग्रता की शक्ति को आत्मसात करूंगा और उस एकाग्रता से फिर जितनी सूचनाएं हैं, जितना ज्ञान है संसार में, वो सब कुछ अंगीकार धारण कर लूंगा. हम में अनंत शक्तियां है. आप यहां जो आए हैं उसका एक लक्ष्य है स्पिरिचुअल पावर्स को जागृत करना, और हमारे अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है कि हमारे जीवन में जो भी समस्या है, जो भी मुसीबतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उस समय उसके सामने कुछ भी नहीं. एक लाइन मैं आपको दे रहा हूं जो अपनी डायरी में नोट करके रखना है, हर समस्या से बड़ा मैं हूं, हर प्रॉब्लम से बड़ा मैं हूं, मेरे पास अनंत शक्तियां हैं. और शक्तियां जागृत कैसे होती है, याद दिलाने से स्वयं को. जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल बैठे थे, उस जामवंत ने याद दिलाया, उस तरह हम भी अपनी शक्तियां भूल बैठे हैं और रो रहे हैं कि हम शक्तिहीन हैं, हमसे ये नहीं होता, हम ये नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते. अगर एक व्यक्ति कर सकता है तो सब कर सकते हैं. और जैसे आपने यहां अनुभव किया होगा, आत्मा के साथ एक और शक्ति जुड़ी हुई है, वो है परमात्मा शक्ति. तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, उस शक्ति का आह्वान, आंखें बंद और अनुभव करेंगे कि वो पावर मेरे साथ है और मैं सर्वशक्तिवान हूं.
धुंधला जाए जो मंजिले, एक पल को तू नजर झुका,
झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता.
तेरी किस्मत तू बदल दे,
रख हिम्मत बस चल दे,
तेरे साथी मेरे कदमों के है दिशा. तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा. पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहां चला रे,
हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे.
तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूं मैं तेरे संग में. हो शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा, जब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह.
तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा,
तू न जाने आस पास है खुदा, आसपास है खुदा.
मिट जाते हैं सबके निशान, बस एक वो मिटता नहीं है.
मान लेगा हर मुश्किल को मर्जी मेरी.
कभी
न एक पल भी मैं जुदा, है खुदा,
तू न जाने आस पास है खुदा,
तू न जाने आस पास
है खुदा।
मैं आत्मा अनंत शक्तियों से भरी हूं, इस सृष्टि की सारी शक्तियां मुझ में समा रही है, मेरा हर संकल्प शक्तिशाली है, मेरा हर बोल शक्तिशाली है, मेरा हर कर्म शक्तिशाली है, मेरी दृष्टि वृत्ति दृष्टिकोण उठना बैठना व्यवहार जीवन की हर बात में शक्ति समाई है, ये किस स्थान पर मैं आया हूं, इस स्थान के अलौकिक प्रकंपन मेरी शक्तियों को जागृत कर रहे हैं, सारी दुर्बलता सारी वीकनेस समाप्त, अपने भाग्य का मैं रचता हूं, एक नजर अपने जीवन पर देख रहा हूं, बचपन युवा अवस्था वर्तमान जीवन कार्य व्यवहार, वो कौन सी बातें थी जिन्होंने मुझे कमजोर कर दिया, जीवन का अवलोकन गहन मौन अव्यक्त वायुमंडल स्वयं को देख रहा हूं, एक विशाल पर्दे पर सारा जीवन दिखाई दे रहा है, मैं साक्षी हूं, और यहां बैठे बैठे जीवन के सारे दृश्यों में शक्तियां भर रहा, स्वयं को देख पा रहा हूं दूर से, अपनी हर कमी को कमजोरी को देख रहा हूं, मेरे रिश्ते मेरे संबंध कैसे हैं, परिवार वालों को पति को पत्नी को बच्चों को मित्रों को मैं आत्मा। परम शक्ति का अनुभव कर रही स्वयं को देखने की शक्ति। ओम शांति। तो सबसे पहली या पहला टी जो है वो है एबिलिटी। इस एबिलिटी को वापस लाना है जीवन में, और वो आएगा अपने आप को जानने से, अपने आप को देखने से। क्योंकि हम इतने जुड़े हुए हैं, अटैच्ड है स्वयं से, जब तक स्वयं को स्वयं से डिटैच करके दूर से नहीं देखते तब तक ये जीवन में क्या है दिखाई नहीं देगा। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने अपने जीवन के विषय में लिखा है, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ माई लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स। सारा जीवन संशोधन में बिताया परंतु जीवन के अंत में ऐसा क्यों लग रहा है कि जीवन रिक्त ही रह गया, हाथों से जैसे निकल गया। जो करना था वो किया ही नहीं, जो पाना था वो किया ही नहीं, कुछ और ही पाते रहे, कुछ और ही करते रहे। और जिसने जीवन की रिक्तता को नहीं भरा, तो सबसे पहली है एबिलिटी, अपनी एबिलिटीज, अपनी क्षमताओं को जानना। यह सबसे पहला टी है जिसको रोज पीना है, क्योंकि हम अपनी एबिलिटीज से बहुत कम कर रहे हैं जो कर सकते हैं। दूसरा है ब्यूटी, दूसरा टी है ब्यूटी। और संसार में सबसे बड़ी ब्यूटी कौन सी है? सबसे बड़ी ब्यूटी कौन सी है? जिसका शरीर सुंदर है वो सबसे सुंदर है? सबसे सुंदर कौन है इस संसार में? जिसका चरित्र निर्मल है, जिसका कैरेक्टर स्पॉटलेस है, बेदाग है, जिसमें प्यूरिटी है, पवित्रता है। बाइबल में लिखा है, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी द किंगडम ऑफ गॉड। यदि हमारे हृदय में षड्यंत्र है, छल है, कपट है, तो कभी भी हम शांत नहीं हो सकते। क्योंकि सुख और शांति दो बच्चे हैं, किसके? पवित्रता के। पवित्रता की गोद में सुख और शांति खेलते हैं। जहां पर सुख नहीं और शांति नहीं जीवन में, समझ लेना वहां पर पवित्रता नहीं है। जरूर कोई अपवित्रता है, जरूर कोई इंप्यूरिटी, कोई कंटैमिनेशन, कोई एडल्ट्रेशन हुआ है, कोई खाद पड़ी है। अध्यात्म का एक ही लक्ष्य है आत्मशुद्धि, सेल्फ प्यूरिफिकेशन। कितना हमने अपने चित्त को पवित्र बनाया है, सभी विकारों से मुक्त किया है। वास्तविक सौंदर्य जो है वो है प्यूरिटी का सौंदर्य। इस स्थान पर आप आए, हर एक कितनों को ऐसा लगा कि इस स्थान में कुछ तो है, कितनों को लगा कि कुछ तो अलौकिक शक्ति है यहां पर जो संसार में नहीं है, किसी मार्केट, किसी बस स्टैंड, किसी एयरपोर्ट में जो प्रकंपन है और यहां जो प्रकंपन है, इसमें अंतर है। क्यों? क्योंकि यहां एक शक्ति है और वो शक्ति है प्यूरिटी की शक्ति। यहां जो शक्ति है वो शक्ति है ब्रह्मचर्य की शक्ति। जितनी चेतना शुद्ध होगी उसमें पावर आएगी। आज सारे संसार शक्तिहीन क्यों है? क्योंकि सब जगह हर मन में काम विकार और काम वासना समाई है, हवाओं में काम विकार है। हर मीडिया, हर चैनल, हर किताब, हर नॉवेल शरीर के इर्द गिर्द घूम रहा है। शरीर ही है जिसे संसार के लोग प्रेम, मोहब्बत, इश्क कहते हैं, वो दमित कामना है केवल। दैट्स नॉट लव। लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी। प्रेम तो शरीर से ऊपर होता है। अपनी वासना को ही प्रेम का नाम दिया है, देते हैं और वही दिखाते हैं। इसलिए देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन एवरीवेयर। सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा पावर जो है वो है प्यूरिटी में। और जितने महान कार्य संसार में हुए हैं, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, सब कार्य प्यूरिटी की अवस्था में हुए हैं। सभी कार्य, बड़ी बड़ी कविताएं जो लिखी गई है प्रकृति के सानिध्य में उस पवित्र वातावरण में लिखी गई है। ए आर रहमान ने कहीं लिखा है या कहीं कहा था, व्हेन आई हैव टू कंपोज अ न्यू म्यूजिक आई डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग, आई गो इन एन आइसोलेटेड स्टेज। वहां पर मैं ये भी भूल जाता हूं कि ये जो गीत मैं लिखूंगा, ये जो संगीत मैं लिखूंगा, ये बहुत प्रसिद्ध होगा, बहुत फेमस होगा, मुझे तारीफ होगी, मुझे अवार्ड मिलेगा, ये सब विचारों को मैं बाहर कर देता हूं, तभी जाकर मैं कोई नया संगीत प्रोड्यूस कर सकता हूं, क्रिएट कर सकता हूं। आत्मा की सबसे ज्यादा शक्ति जो है पवित्रता है, और आत्मा का ये मूल स्वभाव है। हमारा मूल स्वभाव अपवित्रता नहीं है, इसलिए ऐसा क्यों लगता है जब भी किसी मंदिर में जाओ, किसी तीर्थ स्थान पर जाओ, एकदम परम शांति का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वभाव के नजदीक आते हैं वहां पर, और जैसे ही संसार में चले जाते हैं और संसार के वायुमंडल में खो जाते हैं, शक्ति कम हो जाती है। आप जो यहां आए, यहां आना सफल तभी होगा जब यहां से संकल्प करके जाएंगे कि आज के बाद जीवन में किसी भी प्रकार की अपवित्रता को आने नहीं देंगे, हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। इसी में बहुत बल है, इसी में आनंद है। ऐसा आनंद पवित्रता में जो आनंद है और संसार में कहीं पर भी नहीं है। पवित्रता में जो शक्ति है संसार में कहीं नहीं है। ब्यूटी जो है, सबसे बड़ी ब्यूटी वो है प्यूरिटी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। रामचरितमानस में श्री राम जी कहते हैं कि मुझे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे जो निर्मल मन के है वो मुझे प्रिय। मोहि कपट छल छिद्र, कपट करने वाले, छल करने वाले और दोष देखने वाले मुझे प्रिय नहीं है। मुझे ऐसे लोग प्रिय है जो बहुत शुद्ध है, बहुत निर्मल है, बहुत पवित्र है। तो इस पवित्र वायुमंडल में हमें पवित्र संकल्प करने हैं, क्योंकि लॉ ऑफ वाइब्रेशंस कहता है कि जो भी इस संसार में जो कुछ है सब वाइब्रेट हो रहा है। ये मोबाइल रखा हुआ ऐसा लग रहा है ये हिल नहीं रहा है, परंतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो तो अंदर 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 सब कुछ हिल रहा है। दिस एंटायर यूनिवर्स, ये सारा कायनात समुद्र है प्रकंपन का। हम जो सोच रहे हैं ऐसा ना सोचो कि वो दूसरों तक नहीं पहुंच रहा है। यदि हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं और ऊपर से अच्छा बोल रहे हैं, उस तक वो वाइब्रेशन जरूर जाएंगे। हम यहां पर बैठकर आपसे जो बातें कर रहे हैं, अगर इस बातें करने में झूठ है, असत्य है, दिखावा है, ढोंग है, आडंबर है, तो आपके दिल को वो पता चल जाएगा, चाहे हम कितना भी ऊपर से अच्छा कहें, क्योंकि वाइब्रेशंस रिचेस्ट फर्स्ट बिफोर द स्पीच। शब्द तो कान में बहुत बाद में पड़ रहे, पहले प्रकंपन पड़ रहे हैं। और एक बात जो सबसे बड़ा स्पीच आप सुनेंगे यहां पर, वो यहां बैठा जो है उसके द्वारा नहीं, इस परिसर में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको तो ये भी नहीं पता होगा कि यहां कॉन्फ्रेंस चल रही है, यहां कोई रिट्रीट चल रही है। वो अपनी सेवाओं में इतने मगन हैं, उनको कुछ पता भी नहीं। उनसे जाकर पूछो एक ही प्रश्न कि आप यहां क्यों आए, वो जो उत्तर देगा अपनी टूटी फूटी भाषा में, चाहे उसे व्याकरण का ज्ञान भी नहीं, उसे हिंदी भी नहीं आती पूरी तरह से, पर वो जो उत्तर देगा दैट विल बी द ग्रेटेस्ट स्पीच। वो नहीं जो हम यहां सुना रहे हैं, क्योंकि वो जो सुनाएगा वो अनुभव सुनाएगा, और इस संसार में अनुभव से बड़ा कोई और भाषण नहीं। एक व्यक्ति अपने जीवन का अनुभव सुनाता है कि कैसे वो इस स्थान पर पहुंचा और कैसे जीवन में क्रांति आ गई। रिलीजन इन वन वर्ड इज रियलाइजेशन। कितने किताबें पढ़ो, पंडित बन जाओ, परंतु धर्म अर्थात अनुभूति एक ही शब्दों में, तो सभी फिर से अलर्ट होके बैठेंगे। अपने आप को इतना रिलैक्स कर दो, दोनों पैर रिलैक्स, मन पर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, उसको अपने वास्तविक निज स्वरूप में स्थित हो जाने दो, और अनुभव करेंगे स्वयं के स्वरूप का। मन स्थिर, बुद्धि एकाग्र।
पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है।
क्या कारण है? संबंधों में ये खेचातान क्यों? क्यों बार बार उदासी? क्यों ये कड़वाहट? दूर पहाड़ी पर बैठा मैं अपने जीवन के सारे दृश्यों को देखता हूं और इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि जब जब जीवन में अपवित्रता आई मैं दुखी हो गया, जब जब प्रेम को शुद्धि को पवित्रता को काम विकार ने रिप्लेस किया तब तब जीवन में दुखी हुआ। आज मैं आत्मा संकल्प करती हूं मुझे अपने जीवन में वह पवित्रता फिर लानी है। तभी ये जीवन सुखी हो सकेगा। ये जो भय है, ये जो इनसिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं सबके पीछे काम और कामनाएं हैं। अपने हर संबंध में मुझे पवित्रता भरनी है। मेरी वाणी में पवित्रता के प्रकंपन हो, मैं जो देखूंगा केवल पवित्र दृश्य ही देखूंगा। शरीर और शरीर के आकर्षण, शरीर और शरीर के भोग और वासनाएं मेरी शक्तियां कम करती है इन्होंने। अब मैं निज स्वरूप की ओर हूं, शक्तिशाली। ओम शांति। 1930 महात्मा गांधी श्रीलंका गए थे और वहां पर मंच संचालक ने उनका परिचय दिया। आज हमारे बीच महात्मा गांधी आए हैं, साथ में उनकी पत्नी थी जिनको वो बा कहते थे। मंच संचालक ने कहा, आज हमारे बीच में महात्मा गांधी आए और साथ में उनकी मां भी आई है। बाद में जब महात्मा गांधी जी बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि आपने सही कहा, ये मेरी पत्नी थी, अब ये मेरी मां है। हमारे बीच जो संबंध था कभी वो वासना का था, पर अब जो संबंध है वो प्रेम का है, वो पवित्रता का है, प्यूरिटी का है। और जब जब संबंधों में प्यूरिटी आएगी अपने आप घर का वायुमंडल बदल जाएगा। तो दूसरा जो टी है वो क्या है? ब्यूटी। ये टी पार्टी करनी है रोज अपने घर में। अगर हमारे घर कोई आए तो उसे लगे किसी आश्रम में प्रवेश कर रहा है, इतनी उसमें प्यूरिटी हो, इतने वहां के प्रकंपन शक्तिशाली हो कि मन शांत हो जाए, चेतना शुद्ध स्थिर हो जाए। कि हमारे घर का वायुमंडल ऐसा है जैसा किसी मंदिर का, यदि नहीं तो यहां से संकल्प करके जाना है ऐसा हमें बनाना है। और वो बनेगा विचारों से। तीसरा टी है चैरिटी। इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। मुझे सबसे पहले किसको बदलना है? स्वयं को। सूफी संत बायजीत ने कहीं लिखा है, जब मैं बहुत छोटा सा था मुझे लगता था सारी दुनिया बदल दूंगा, क्रांति लाऊंगा संसार में, सब कुछ बदल के रख दूंगा। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला ये संभव नहीं है, सारी दुनिया को बदलना बहुत मुश्किल है। उसने सोचा मैं अपने देश को बदल दूंगा, देश को तो बदल ही सकता हूं। और थोड़ा बड़ा हुआ, पता चला देश को भी नहीं बदला जा सकता है, पर हां मैं अपने परिवार को तो जरूर बदलूंगा, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, ठीक करूंगा एक एक को पकड़ पकड़ के। फिर वो कहता है अब बूढ़ा हो गया, अब समझ में आया है क्या कि मैं अपने परिवार को भी नहीं बदल सकता, मैं केवल एक ही व्यक्ति को बदल सकता हूं संसार में, और वो कौन है? मैं स्वयं। कब तक मैं कहूंगा ये करो वो मत करो ऐसा करो वैसा करो? और हमारी ये टेंडेंसी है कि हम अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर थोपते हैं, लादते हैं। किसी कवि ने कहा है, खलील गिब्रान ने, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू नॉट फॉर यू। वो तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है, वो एक आत्मा है, अपनी उनकी पहचान इंडिविजुअलिटी है। हां उनको शिक्षा दी जा सकती है, उनको अच्छी बातें सुनाई जा सकती है, पर जरूरी नहीं है कि वो करेंगे जो तुम चाहते हो। और यही दुख का कारण है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को दूसरों पर लादते हैं और वो एक्सपेक्टेशन कभी पूरी नहीं होती है, इसलिए बहुत दुखी होते हैं। सबसे पहली दया जो हमको करनी है वो स्वयं पर करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहला परिवर्तन जो करना है अपने आप से चालू करना है, ये परिवर्तन की प्रक्रिया, मुझे बदलना है। और ये अहंकार को बड़ी चोट है क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम बदलो, हम क्यों बदले? पर यही जीवन है और अनुभव भी यही कहता है कि मुझे अपने आप को बदलना है। और अपने आप को बदलने के लिए दो चीजें चाहिए, मौन और एकांत। मौन, साइलेंस जो शायद कहीं खो गया है, एकांत जो शायद कहीं खो गया है। महात्मा गांधी ने लिखा है एक जगह, 24 अगस्त 1910, यंग इंडिया एडिटर थे वो उस न्यूज़पेपर के, तब उन्होंने लिखा, एक बार मैं अफ्रीका गया, वहां एक आश्रम में प्रवेश किया, ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री, वहां पर मैंने देखा सभी मौन व्रत धारण किए हुए हैं। मैंने आश्चर्य हुआ मुझे, और मैं उस मठाध्यक्ष से मिला, हेड ऑफ द मोनेस्ट्री, व्हाट इज दिस, व्हाई एवरीबॉडी इज ऑब्जर्विंग साइलेंस हियर। वो मठाध्यक्ष कहता है कि देखो हम मनुष्य बहुत दुर्बल प्राणी है, हमको तो ये भी नहीं पता क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इसलिए इस आश्रम में नियम है कोई कुछ बोले ही नहीं, मौन ही धारण करे। इस बात का उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि सारे जीवन भर एवरी मंडे ही यूज्ड टू ऑब्जर्व साइलेंस, एक दिन पूरा मौन। और हम चाहेंगे कि जब तक आप यहां हो बहुत सी बातें सुनने को मिलेगी, परंतु आंतरिक मौन रहे एक और स्वयं की चेकिंग करते रहे, ये यहां सुन रहा हूं और ये मेरा जीवन है, यहां की दिनचर्या और वहां की दिनचर्या में क्या अंतर है, वो सुबह उठना, वो अखबार, वो भागना, वो ट्रैवल, वो ऑफिस, वो रिश्ते, वो संबंध, वो इच्छाएं, वो करियर, कहां भाग रहा हूं और क्यों भाग रहा हूं? स्टॉप, स्टैच्यू, साइलेंस। तीसरा है चैरिटी, खुद ही पर दया करना है। बहुत सताया खुद को, बहुत तड़पाया अपनी आत्मा को। उसके बाद है डेक्सट्रिटी। डेक्सट्रिटी अर्थात दक्षता, अपने कर्मों में स्किलफुलनेस। योगः कर्मसु कौशलम्। गीता कहती है कि जो योगी है उसके कर्म अपने आप दक्षता वाले हो जाते हैं, स्किलफुल हो जाते हैं, क्योंकि योगी का मन एकाग्र होता है। और हम अगर देखें, हमें कोई टास्क दी जाए, कोई जॉब दिया जाए, कोई टारगेट दिया जाए, कितना मन भटकता है। जितनी एकाग्रता होगी उतना वो फास्ट होगा। और एकाग्रता के लिए योग को अपने जीवन में शामिल करना है। जो यहां से आप सीख कर जाएंगे वो केवल एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए है। आपने देखा होगा यहां पर लोग कितने बजे उठते हैं, कितने बजे उठते हैं? प्रातः स्मराम हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरियम तद ब्रह्म निष्कलमहम नच भाति भूत संगम, नच भाति भूत संगम। आई एम नॉट दिस असेंबलेज ऑफ बॉडी, मैं ये देह नहीं, परंतु मैं वो शुद्ध चेतना हूं। उस शुद्ध चेतना में सुबह सुबह प्रातः स्मरामी, जब आत्मा टिक जाती है, एक शक्तिशाली वायुमंडल यहां क्रिएट हो जाता है। सुबह सुबह देखो 4 बजे कैसे वायुमंडल होता है यहां, पिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटा छा जाता है। जैसे इससे भी ज्यादा शक्तिशाली ऊपर माउंट आबू में पांडव भवन, वहां कुछ कुछ लोगों का उठने का टाइम है 2 बजे, ऐसा सन्नाटा छाता है। और वहां पर अभ्यास, मैं देह नहीं, मैं कोई और हूं, और आत्मा उड़ती है ऊपर आकाश में, और वहां जाकर जीवन के सारे प्रश्नों का जैसे उत्तर मिल जाता है। क्योंकि शरीर में रहते 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 और समस्याओं के बारे में सोचते सोचते कुछ हल नहीं मिल पाता। डिटैचमेंट जब तक नहीं, तब तक कोई भी प्रॉब्लम हल नहीं हो सकता। डिटैचमेंट फ्रॉम वंस बॉडी, सुबह सुबह उठने का अभ्यास, और वो आदत की बात है। आदत बनने के लिए 21 दिन लगते हैं, शुरुआत 3 दिन से करनी है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी मन को, एक बार टेस्ट आ गई अतिंद्रिय सुख की कि फिर अपने आप सब होगा। आत्मा डूब जाए उस आनंद के सागर में, अब तक डूबी रही सेंशुअल प्लेजर्स में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, भोग और विलास में, अब उसे तपस्वी बनाना है। और किसी जंगल में जाकर नहीं, अपने ही घर में रहकर, तब कर्मों में कुशलता आएगी। कहीं भाग कर कुछ भी नहीं करना है, और कुछ किया भी नहीं जा सकता है। कहीं भागोगे तो किसी जंगल की गुफा में, वहीं पर सुपर बाजार मन में क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए कहीं नहीं जाना है, जहां है वहीं पर। ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुमको ही बदलना है। जिस स्थान पर है वही स्थान रहेगा, जिन व्यक्तियों के साथ काम कर रहे हो वही बॉस रहेगा, जो परिस्थिति है वो भी वही रहेगी। बदलना किसको है? मुझे। मैं जब बदल जाता हूं, अपने आप सब बदल जाएगा। डेक्सट्रिटी अर्थात कुशलता, कर्म कुशलता है। उसके बाद है इक्वैनिमिटी। इक्वैनिमिटी अर्थात स्थिरता, अचल अडोलता। गीता में शब्द प्रयोग किया गया है स्थित प्रज्ञ योगी, अर्थात जीवन में अच्छा हो बुरा हो, जो कुछ हो रहा है सब आउटसाइड है, इनसाइड आई शुड रिमेन स्टेबल। जैसे एक यंग गर्ल जो कि किसी ऑफिस में काम करती है, इतनी परेशान हो जाती है अपने ऑफिस से, अपने दादी मां के घर जाती है और कहती है, दादी मां ये क्या है जीवन में इतना संघर्ष, सब लोग षड्यंत्र करते हैं, सब लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, ऑफिस में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्या यही जीवन है? तो उसकी दादी मां किचन में जाती है और एक गाजर, एक अंडा और कॉफी की बीन्स, 3 अलग अलग बर्तनों में पानी गर्म करती है, उसमें ये तीनों चीजें डाल देती है। 15 मिनट के बाद वो तीनों बर्तनों को ले आती है और कहती है, देखो क्या हुआ। पहला गाजर गर्म पानी में उबला, नरम हो गया। ये उन लोगों के सतरा है, वो गर्म पानी परिस्थिति है जिसमें वो कमजोर हो गया, संघर्ष करते करते, जीवन में लड़ाई करते करते, लड़ते लड़ते, चैलेंजेस को स्वीकार करते करते, इस दौड़ में कमजोर पड़ गया। दूसरा वो अंडा है, वो ऊपर से सख्त हो गया, अंदर से कमजोर, जीवन ने कठोर बना दिया उसको, निगेटिव हो गई पर्सनैलिटी, सब धोखे देने वाले ऐसे ओपिनियन हो गया। और तीसरा उन कॉफी बीन्स ने क्या कर दिया, सारे पानी को ही बदल दिया, सारे पानी को क्या कर दिया, कॉफी बना दी। हमें बनना है उस कॉफी बीन जैसे, नो मैटर कैसी भी परिस्थितियां हो, पर हमारा आउटलुक कैसा है, कितना पॉजिटिव है। और पॉजिटिव तभी होगा जब अर्ली मॉर्निंग उठकर मेडिटेशन होगा, जब जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत मेडिटेशन से होगी पावरफुल। अपने आप गाड़ी पटरी पर डाल दिया, दिन भर सोचने की जरूरत नहीं, कहां जाएगी, अपने आप चलेगी, माइंड ही इतना पावरफुल बना दिया सुबह सुबह। और अगर उठते से ही संसार की न्यूज और खबरें और संसार की बातें बहते रहेंगे जीवन भर, इसके लिए इक्वैनिमिटी अर्थात अचल अडोलता, इक्वैनिमिटी अर्थात स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लानी है जीवन में। उसके बाद है एफ, एफ फॉर फिडिलिटी। फिडिलिटी अर्थात वफादारी। मेरा और मेरे परिवार के जो लोग हैं उनके साथ कितनी वफा है मेरी, एम आई फेथफुल, एम आई ट्रस्टफुल? दो व्यक्तियों के जो संबंध है उसमें जो सूक्ष्म धागा है वो है ट्रस्ट। जिस दिन वो ट्रस्ट, वो वफा चली जाएगी, घर में कलह होगा। फिडिलिटी जिसको कहते हैं, ये एक टी है, इसको जीवन में लाना है कि मैं कितना वफादार हूं, कितना ट्रस्ट वर्दी हूं। यदि जीवन में अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है तो एक कारण है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट की कमी है। एक तो अपने आप में ट्रस्ट, व्यक्तियों में ट्रस्ट, और उस भगवान में ट्रस्ट। फेथ, निश्चय, ट्रस्ट, वफा, ऑनेस्टी। जितना व्यक्ति ऑनेस्ट होता है उतनी उसमें ब्यूटी होती है। ये बातें केवल बुकिश नहीं है, रियल बातें हैं। और आप यहां देखेंगे, हमने यहां देखा ऐसी ऐसी भूली भूली माताएं हैं यहां काम करने वाली, सेवा करने वाली, ऐसे ऐसे भाई हैं, कुछ कुछ अनपढ़ है, उनको कुछ भी नहीं पता, पर उनमें इतनी प्यूरिटी है, इतनी सच्चाई है, इतनी ईमानदारी है, इतनी वफा है। ऐसा लगता है कि हमारे पास ये ज्ञान है पर इनके पास कुछ भी नहीं, फिर भी कितना इनका जीवन श्रेष्ठ है, इतना जीवन महान है। एक बार इसी मनमोहिनी कैंपस में बहुत बड़े कमिश्नर आए थे, तो यहां से शांतिवन जाना था, बस शायद उस समय नहीं थी, तो हमारे एक भाई थे, बड़े भोले भाले भाई है, तो उनको क्या पता वो कौन है। उन्होंने कहा चलो मैं तुमको छोड़ देता, और उनको साइकिल के सामने वाले डंडे पर बिठाया और यहां से लेके गए उधर शांतिवन तक, और बातें बीच बीच में ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताई कि वो कमिश्नर साहब पूरे पिघल गए। उन्होंने कहा ऐसा व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा आज तक। एक दूसरी माता थी, एकदम भोली भाली माता, और किसी बहुत पुलिस सुपरिंटेंडेंट या कोई तो ऐसे आए थे ऊपर ज्ञान सरोवर में, और वो उनको वो चित्र समझा रही थी, और वो ढेर सारे प्रश्न पूछ रहे थे, और बहुत सारे प्रश्न पूछने के बाद वो जो माता थी वो उनको ऊपर से नीचे तक दिखती है ऐसे ऐसे, और कहती है देखने में तो पढ़े लिखे दिखते हो पर इतना सा भगवान कौन है, इतना भी समझ में नहीं आता है तुमको। वो बात उसको ऐसी चुभ गई कि वो यहां से गए, और फिर सेवा केंद्र में जाके उन्होंने ये जो ज्ञान का कोर्स होता है वो थोड़ा समझने की कोशिश किए, और फिर खुद ही उन्होंने अपने मुख से अनुभव बताया कि उस माता ने मुझे ऐसा कहा था कि दिखने बड़े होशियार लगते हो, पढ़े लिखे लगते हो, इतनी छोटी सी बात तुमको समझ में नहीं आती। चुप गई। क्या थी यहां पर? सच्चाई थी, वफा थी, फेथ था। वो ज्यादा खींचती है आत्माओं को, तो वो सच्चाई हमारे अंदर हो। उसके बाद है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी अर्थात उदार चरितम तुम वसुदैव कुटुंबकम। बहुत ऊंची भावनाएं, बहुत ऊंची भावनाएं, छोटी छोटी भावनाओं से उठ जाना ऊपर। हमको याद है हमारे अपने जीवन में, हम जब बहुत छोटे थे, एक गीत हमारे कान में हमने सुना, और वो गीत ने उसका अर्थ भी पूरा पता नहीं था, पूरा गीत भी नहीं सुना, थोड़े ही शब्द थे, परंतु वो जैसे बीज की तरह बाल मन में अंदर समा गए। वो मराठी गीत था बलसागर भारत हो वो विश्वात शोभनी राहो। उस गीत में था कि सर्वस्व त्यास अर्पिन, इस देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दूंगा, ये जीवन ना तरी व्यर्थ, ये जीवन वैसे भी व्यर्थ है। और वो छोटे से मन में संकल्प उत्पन्न हुए कि मुझे अपना जीवन विश्व के लिए देना है, मेरा जीवन व्यक्तिगत नहीं है, एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए भी नहीं है, सारे जगत के लिए है। जो जीवन उधर जा रहा था मेटेरियलिज्म की तरफ, वहां से चेंज होके अध्यात्म की तरफ, क्योंकि ये जीवन का लक्ष्य है, वो नहीं, अपने हृदय को बड़ा करना है, जिसमें सब समा जाए, सब समा जाए, सब अपने हैं, सब हमारे हैं। यहां पर हर एक ने यह अनुभव किया होगा, अपनेपन की फीलिंग कितनों ने अनुभव की, कैसा लगता है ये अपने लोग हैं, इनसे कोई संबंध नहीं, इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी मिले नहीं, परंतु क्यों लगता है कि अपने अपनत्व है यहां पर? क्योंकि इसका बीज हर एक के मन में बहुत गहराई से है, बहुत गहरे में, क्योंकि यहां जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान ही ऐसा है, और आपने एक बात देखी होगी, जो व्यक्ति यहां बैठ के सुना रहा है वो जो ज्ञान सुनाता है, और किसी किचन में चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, हर एक व्यक्ति एक ही ज्ञान सुनाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं है, सब सेम ज्ञान सुनाते हैं सबके सब। ऊपर रिलीजियस विंग की कभी कॉन्फ्रेंस थी, एक महामंडलेश्वर आए थे, उन्होंने कहा आपका ये जो कैंपस है शांतिवन और यहां का, यहां की बात बता रहे थे, वो एक दिन यहां भी रुके थे, उन्होंने कहा यहां पे हमने देखा अपने आप कैसे सब हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता है, सुबह सुबह चाय कैसे बन जाती है अपने आप, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, भोजन बन रहा है हजारों लोगों का, कोई आवाज नहीं, हमारे आश्रम में अगर 500 लोगों में आने वाले हो और 100 अगर ज्यादा आ जाए हलचल हो जाती है, यहां अपने आप हजारों आ रहे और हजारों जा रहे, उसका कारण है ये जो कार्य यहां चल रहा है किसी मनुष्य का नहीं है, इम्पॉसिबल है, जो कार्य यहां चल रहा है वो ईश्वरीय कार्य है, इस संस्था का हेड कोई भी मनुष्य नहीं है, इसको चलाने वाला जो है वो स्वयं वो है, इसके लिए अजीब सा प्रकंपन है यहां पर, अजीब सा वायुमंडल है यहां पर, पता नहीं कौन सी खींच है यहां पर एक, और जो ये बहनें आपको दिखाई देती है ब्रह्मा कुमारी, वो चाहती तो संसार में बहुत कुछ कर सकती थी, पर उनका जीवन तपस्या का जीवन है। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, अ डे विल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर, एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और परमात्मा संदेश सारे विश्व में फैलाएगी, वो भारतीय नारी यही ब्रह्मा कुमारी है, और दूसरा कोई हो नहीं सकता। वो जो भविष्यवाणी उन्होंने कभी की थी, 1902 से पहले संस्था की शुरुआत 1936-37 में हुई, जनरस, अपने हृदय को हार्ट बिग करना है, उसके बाद है ह्यूमिलिटी, अगला टी है ह्यूमिलिटी अर्थात नम्रता, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, यहां पर आप देखेंगे हर एक एक शब्द प्रयोग करता है, आप क्या करते हो, मैं सेवा करता हूं, नम्रता का भाव है। आप कभी ये भी नहीं जान पाओगे यहां जो लोग आते हैं, शायद वो आईएएस ऑफिसर हो सकता है, कभी बताएगा नहीं कि मैं ये हूं, क्योंकि नम्रता में महानता है, पता नहीं चलेगा ये कौन है सामने वाला व्यक्ति, ऐसी सूक्ष्म महानता एक एक में ठूस ठूस कर भरी पड़ी है। एक एक व्यक्ति यहां का हमने देखा है अपने अनुभव से, साधारण नहीं है, चुना हुआ है, जैसे बाइबल में जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू, आई हैव पिक्ड यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड फॉर यू डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। उसी तरह इस संस्था में भी आप देखेंगे जो भी लोग हैं ये भगवान के द्वारा गॉड इलेक्टेड, गॉड चोजन, गॉड सिलेक्टेड है, जिन्हें दुनिया चुनती है वो उधर संसद में रहते हैं, और जिन्हें भगवान चुनता है वो इधर सत्संग में रहते हैं, आप वो सब हो। आपको भी यहां किसने लाया, किसने लाया, परमात्मा ने लाया, और किसने लाया, बहनों ने लाया, और किसने लाया, यहां तक कैसे पहुंचे, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी चीज चाहिए, जन जन से किया हुआ जो पुण्य था उस पुण्य ने ढकेल ढकेल के ढकेल ढकेल के यहां तक पहुंचाया, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल इस स्थान तक पहुंचना। हो सकता है कोई किसी और के टिकट पर आ गया, कई बार ऐसा होता है लास्ट मोमेंट में आने का है आने का है, और लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो जाता है और कोई और आ जाता है, बिना भाग्य के यहां तक कोई पहुंच भी नहीं सकता है। ह्यूमिलिटी, ये टी, ये स्पिरिचुअल टी पार्टी करनी है, ये टी रोज पीना है नम्रता का, क्योंकि जहां अहंकार है प्राइड है द फॉल, वो गिरेगा एक दिन। यहां पर एक शब्द आप सबके मुख से सुनेंगे, हमको बाबा ने निमित्त बनाया है, वी आर इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कोई नल है, नल का अपना कोई अहंकार नहीं है क्योंकि पानी उस टंकी से आ रहा है, हम वो सब नल है, अभी हम बोल रहे हैं हमारे बाद कोई और बोलेगा, महिमा हमारी नहीं है, हम तो केवल नल है, वो जल उस नल से आ रहा है, इसका भाग्य है ये, ऐसी नम्रता। मोहम्मद रफी ने कभी कहा था, शायद उनके जैसी आवाज किसी की होगी आज संसार में या इतने सालों में, उन्होंने कभी कहा था कि मेरी महानता नहीं है, मेरी बड़ाई नहीं है, वो खुदा चाहता तो ये आवाज किसी और हलक में भी डाल सकता था, इसके लिए उसकी महानता है, मेरी नहीं है। ह्यूमिलिटी। उसके बाद है आय। आय अर्थात आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी। हम सारे दिन भर एक मुखौटा पहन के घूमते हैं, मास्क। क्या वास्तव में हमें पता है हम कौन है? हर व्यक्ति के साथ हमारा अलग अलग व्यवहार है और कई बार उसमें झूठ है। एक अमेरिकन फिल्म एक्टर ने लिखा है कि मैंने अपने जीवन में इतने किरदार निभाए हैं, मुझे अब कंफ्यूज हो रहा है मैं हूं कौन। हु आई एम, समटाइम्स अ पुलिस ऑफिसर, समटाइम्स अ विलन, समटाइम्स शेक्सपियर्स हैमलेट, समटाइम्स मैकबेथ, मैं हूं कौन, आई डोंट नो। क्या ये हमारी भी स्टोरी तो नहीं है कि इतने सारे मुखौटे पहन के घूमते हैं सारे दिन भर कि मुझे यही भूल गया है कि मैं हूं कौन, मेरा वास्तविक परिचय क्या है? क्या मैं मां ही हूं, क्या मैं बाप ही हूं, क्या मैं बेटा हूं, बस किसी की बेटी हूं, बस यही मेरा परिचय है, या इन सब से परे भी मेरा कोई एक वास्तविक शाश्वत परिचय है और उस परिचय तक मुझे पहुंचना है, उसी के लिए, अपने आप को जानने के लिए हम सब यहां आए हैं और हम सब यात्रा में हैं, आप भी और हम भी। किसी ने अपने आप को थोड़ा जाना है, किसी ने पूरा जाना है, और अपने आप को जानना है। फिर से अलर्ट होके बैठेंगे सभी, क्योंकि समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। संसार में जो राजनीतिक हलचल हो रही है, संसार में हर प्रकार से हलचल हो रही है, धर्म सत्ता, राज सत्ता, विज्ञान सत्ता, सब हिल रहा है। ऐसा यह संसार बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, समय बहुत कम है, और उस कम समय में हमें अपने आप को जानना है, अपने जीवन को धन्य बनाना है, महान बनाना है। तो सभी स्थिर, अलर्ट, स्टेबल, रिलैक्स।
हम संतान एक पिता का है वरदान, एक पिता की हम संतान एक पिता का है वरदान। हम सब रंग बिरंगे फूल हैं, एक बीज की हम पहचान, एक पिता की हम संतान एक पिता का है वरदान। धारणा और स्वधर्म है मत पर चल बनते हम बचे ऊंचे और ने
स्वयं के अस्तित्व की पहचान, कहां मैं भटक रहा था, कहां मैं खो गया था, मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है, कहां बिखर गया था, संपूर्ण मौन स्वयं से बातें, हे मेरे मन तुझे क्या चाहिए, क्यों भाग रहा है, शांत हो जा, क्योंकि जो चाहिए वो बाहर नहीं भीतर है, अंतर मन में समाया है। स्वचिंतन आत्मावलोकन सेल्फ एनालिसिस सेल्फ एग्जामिनेशन मेरी खोज स्वयं की है, और अब मैंने जाना है वह ज्योतिर्मय आत्मा मैं हूं, अनंत शक्तिशाली शांति मेरा स्वधर्म, पवित्रता मेरे संस्कार, मैं शांत हूं, ओम शांति। उसके बाद में है जोकुलैरिटी, जोकुलैरिटी अर्थात हास्य विनोद रमणीकता, ये भी एक टी है। जीवन में गंभीरता बहुत है, परंतु ऐसा कुछ करना है कि जिसमें हास्य हो, विनोद हो, रमणीकता हो। जब तक ये जीवन में ना हो तब भी जीवन निरस है, और सबसे बड़ी रमणीकता है स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाना, और सबसे बड़ी रमणीकता है ये सारे जो लोग हैं ये मेरे अपने हैं, सबको आत्मिक दृष्टि से देखना, क्योंकि जब जब मैंने देह देखा देह की तरफ आकर्षण हुआ, और जब व्यक्ति देह के आकर्षण में फंसता है तब व्यक्ति वस्तु बन जाता है। प्रेम और काम में यही अंतर है, द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट is that in lust human becomes thing। अलौकिक रमणीकता लानी है। संसार में चीप एंटरटेनमेंट है, चीप कॉमेडी शोज है, इससे आत्मा में बल नहीं पड़ता है। आत्मा को रूहानी एंटरटेनमेंट की आवश्यकता है, उसको ढूंढना है, और वो आपको मिलेगा। यहां बहुत सारी सीडीज है, बहुत सारी कैसेट्स है, बहुत सारी किताबें हैं, उनमें जो खुशी है वो और संसार में कहीं नहीं। उसके बाद है के की, ये एक टी है, की अर्थात चाबी। यहां पर अगले एक दो दिन में ढूंढना है मेरे जीवन में जो दुख है, उस दुख से मुझे मुक्त होना है, वो सुख की चाबी क्या है वो ढूंढ कर ही जाना है, संकल्प ही करके जाना है यहां से कि जब तक मुझे याद है एक छोटा सा बच्चा यहां पर आया था और जो ज्ञान में चल पड़ा अपने मां बाप के साथ, उसको एक बीमारी थी, रात में जब सोता था उसको पिशाब आ जाती थी और उसको पता नहीं चलता था, यूरिनरी इनकंटिनेंस। तो उसने बताया भगवान से क्या कहा, उसने कहा बाबा मैं तुम्हारे घर में आया हूं, अगर आज रात में मुझे बेड पर पिशाब हुई ना तो मैं तुमको साथ ही छोड़ दूंगा तुम्हारा, फिर तुम एक तरफ मैं एक तरफ। ऐसी बात उसने कही, छोटे से बच्चे ने भगवान से कहा बातें, और उस दिन से उसका बंदी हो गया। ये बड़ी अद्भुत बात है, उसने खुद अपने मुंह से सुनाया था। ऐसे भी अनुभव है लोगों के दृढ़ संकल्प के कि चाबी ढूंढना है, जरूर कुछ ना कुछ हल तो है। जीवन में यदि समस्या है, दो व्यक्ति है, पति पत्नी या कोई भी दो व्यक्ति, उनके संबंधों के बीच में टकराव है, तनाव है, अब यहां संकल्प करना है कि ऐसी कुछ चाबी यहां से ढूंढ कर जाएंगे कि वो संबंध ठीक हो जाए, मिल जाएगा उत्तर। उसके बाद है एल अर्थात लिबर्टी, लिबर्टी अर्थात मुक्त। और आज हर एक व्यक्ति एडिक्टेड है, और सबसे बड़ा एडिक्शन कौन सा है, कौन सा है? मोबाइल एडिक्शन, टेक्स्ट एडिक्शन, ऑनलाइन एडिक्शन, यूट्यूब एडिक्शन, वीडियो गेम्स के एडिक्शन, ऑनलाइन न्यूज के एडिक्शंस, ये सबसे बड़े एडिक्शंस है। हमारा सारा टाइम उसमें जा रहा है, वो बहुत जरूरी है माना, परंतु सबसे बड़े विकार भी उसी में छिपे हुए हैं। कहां तो श्रेष्ठता की तरफ जा रहे हो एक क्लिक, और शूद्रता। जितने संसार में कैदी है, कुकर्म और विकर्म और दुष्कर्म करके जेल में सजा काट रहे, जाकर पूछो कहां से सीखा, एक ही सोर्स है, यहां से। क्या देखा जा रहा है रात के अंधेरों में बैठकर इंटरनेट पर, कितनी दृष्टि शुद्ध है, पवित्र है, सारे विकार प्रवेश कर रहे हैं यहां से। और फिर जीवन में हलचल, फिर प्रयोग करना चाहते, जो देखा वो करके देखना चाहते हैं, और पतन की जड़ वही है। इसके लिए किसी ने कहा है, डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट अ पर्पस, बिना पर्पस के इंटरनेट पर नहीं जाना है। पर्पस है उतना ढूंढो, वापस आ जाओ, क्योंकि चालू व्यक्ति कहां से करता है और एंड कहां से करता है। जहां नियम है इस संस्था में, या फिर जल्दी सोने का, वो नहीं हो पाता और फिर लेट उठते हैं, शक्ति कहां से भरेगी। कितने युवक और कितने उनके करियर, हमको ऐसे ऐसे फोन आते हैं लोगों के, हमको ऐसी एक प्राइवेट बात करनी है, और वो ऐसी बात है कि हम किसी को बता नहीं सकते, शेमफुल ऐसी बात है। वो कौन सी होगी आप जान सकते हैं, क्या उन्होंने किया, थॉट क्राइम्स एंड सेक्सुअल क्राइम्स। कहां जीवन में खुशी रहेगी और आनंद रहेगा। अपने आप को एडिक्शन से मुक्त करना है, संकल्प इसी भूमि पर करके जाना है। और जैसे कहा, कोई भी चीज बुरी आदत हो, मुक्त होने के लिए किस दिन चाहिए, नई आदत को धारण करने के लिए किस दिन, खुद ही प्लानिंग बनानी है, संकल्प करना है, पढ़ना है उसके बारे में, क्या मैं करूं, कितना जहर घोल दिया इस आदत ने मेरे जीवन में, चिंतन करना है और उससे मुक्त होने का संकल्प करना है, हो जाएगा। उसके बाद है एम मेलडी, मेलडी अर्थात स्वीटनेस, मधुरता अपने जीवन में लानी है, सारे संबंधों में मधुरता बन जाए, घर का वातावरण ऐसा हो जाए कि एक व्यक्ति ने कहा और दूसरों ने माना, झगड़ा, रोज का टेंशन। अभी अभी एक खबर आई थी न्यूज़पेपर में, एक व्यक्ति सारे दिन भर काम किया, घर पहुंचा, 10वें माले पर घर था, सीढ़ियां चढ़कर गया, ऊपर पत्नी ने दरवाजा खोला, कहा कि डबल पाव रोटी लाई है क्या, उसने कहा भूल गया, उसने कहा जब तक नहीं लाओगे मैं अंदर नहीं आने दूंगी। वो नीचे उतरा पैदल, लिफ्ट बंद थी, गया दुकान के पास, गया दुकान बंद थी, उसका फोटो निकाला, व्हाट्सएप पे अपनी वाइफ को भेजा, उसने कहा मैं नहीं जानती, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। फिर और आगे गया, और लेट हुआ, और रात भर झगड़ा चला, सुबह डिवोर्स। ये स्थिति है, संबंध ऐसे तनाव युक्त है, ऐसे झगड़े वाले हैं। इंग्लिश में कहते हैं, इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर, अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वास्तव में वो हारता है। इसके लिए अपने अहंकार को थोड़ा नीचे कर देना है। ऐसा कहते हैं इंग्लिश में कि जितने झगड़े होते हैं, दैट आर बिकॉज ऑफ 90% आर बिकॉज ऑफ टोन ऑफ वॉइस, किस टोन से बोले जा रहे हैं, टोन क्या था बोलने का, उससे झगड़े होते। तो मधुरता, ये टी लानी है जीवन में, मेलडी, मेलडी स्वीटनेस, और वो आएगी नम्रता से, वो आएगी, झुकना पड़ेगा थोड़ा, हम थोड़ा सा झुक जाए तो कुछ धरती नहीं फट जाएगी, पर झुकना ही नहीं चाहते। झुक जाओ, बहुत अच्छा है झुकना। माना तुम ही राइट हो, ठीक है। व्यक्ति वस्तुओं से बड़ा है, वस्तु चली जाए चलेगा, व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। अमूल्य वस्तु टूट गई, किसी को डांटा, वो व्यक्ति चला जाएगा, संबंध में दरार चली होगी। इसी संस्था की एक बहुत बड़ी व्यक्ति है, उन्होंने कभी अपना अनुभव सुनाया था। एक बहन ने, उसने कहा था कि एक बार ऐसा हुआ, सेवाओं के दरमियान हम लोग सेवा कर रहे थे विदेश में, और कुछ पैसों की बात थी, किसी एक बहन को पैसे संभालने के लिए दिए थे, उसने वो गुम कर दिए। तो इस बड़ी बहन ने उस बड़ी छोटी बहन को थोड़ा सा डांट दिया। उसने कहा, इस बात को 30 साल हो गए, बाद में वो पैसे मिल भी गए और मैंने सॉरी भी बोल दिया, इस बात को 30 साल हो गए, परंतु हम दोनों के बीच रिलेशनशिप में जो क्रैक थी आज भी है, अभी तक ठीक नहीं हुई है, आज भी है। व्यक्ति वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण है, व्यक्ति पैसों से अधिक महत्वपूर्ण है। पैसे आ जाएंगे, चीजें आ जाएगी, व्यक्ति नहीं आएगा। जो रूठ गया, जो नाराज हो गया, इसके लिए झुक जाना है, मेलोडी लानी है। उसके बाद है नोवेल्टी, अर्थात न्यूनेस, अर्थात नवीनता, वही तरीके का, उसी तरीके का जीवन। सुबह उठना, ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, हर दिन कुछ तो नया हो, हमारे बोल में नवीनता हो, हमारे सीखने में नवीनता हो, कुछ तो नई भाषा सीखो, कोई नई स्किल सीखो, संबंधों में नवीनता हो, सेवाओं में नवीनता, हर बात में नवीनता। हम देखते हैं ऊपर हॉस्पिटल में लोग आते हैं, कभी कभी एक एक फूल एक एक पेशेंट को पकड़ा कर चले जाते हैं, कुछ भी नहीं कहते उनको, केवल फूल दे देते और चले जाते हैं। क्यों? उनको खुशी होती है, समथिंग न्यू, सम न्यू एक्ट्स ऑफ गुडनेस। अनाथ आश्रम में जाते हैं, किधर भी जाते हैं, थोड़ी सी सेवा करके चुपचाप आ जाते हैं, हमारा कहीं नाम ना हो। समथिंग न्यू लाना है जीवन में। जैसे आप यहां आए, यहां पर बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिल रही है, ऐसे ही कहीं कहीं जाते रहना है, जहां से भी सीख सको सीखना है, और नवीनता जीवन में लाना है, नोवेल्टी। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी, ओ अवसर। जीवन अवसर जरूर देता है, हम चूक जाते हैं। जीवन बहुत अवसर देता है सीखने की, यहां आना ही सबसे बड़ा अवसर है, यहां आना हर एक के लिए टर्निंग पॉइंट हो जाए। अब तक का जीवन और अभी यहां आए, इसके बाद का, जाने के बाद का जीवन शुड नॉट बी द सेम। अब तक माफ किया जा सकता था, पता नहीं था बहुत सारी बातों का, अब पता चला है, अब पता चला है ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। अब जैसे जागृति हुई, अगर अब भी वही कर रहे, अब भी वही सारी दिनचर्या हो, अभी भी वही इंटरनेट और यूट्यूब में वही विकार में डूबे रहे, तो माफी नहीं मिलेगी। यहां की अदालत में तो छूट जाएंगे, एक इससे भी बड़ी अदालत ऊपर है, अवसर। नियति ने एक अवसर दिया है अपने आप को बदलने का, बदलना है। उसके बाद है पी, पॉजिटिविटी, ये एक टी लाना है। हर चीज में इतना निगेटिव हो गए, इतना निगेटिव हो गए, कई लोग देखते हैं हम यहां आने के बाद यहां पर भी निगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। दिस इज द ओशन ऑफ पॉजिटिविटी, पर जिसको निगेटिव देखना है वो देख ही लेगा, ढूंढ ही लेगा, यहां ये ऐसा करते वो वैसा करते, यहां के लोग ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि वृत्ति में ही निगेटिविटी है। क्यू, क्वालिटी। हम जीवन तो जी रहे, क्वालिटी क्या है पर उस जीवन की? पैसे तो बहुत कमा लिए, परंतु क्वालिटी क्या है लाइफ की? कितना सुख है घर में, कितनी शांति है, कितनी एकाग्रता है, कितने सुकून से आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, शायद नहीं है। द क्वालिटी हैज डिटेरियोरेटेड। भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ गई है, क्वालिटी हैज गॉन डाउन। क्वालिटी को लाना है, ये टी लाना है जीवन में, इस टी को पीना है कि वी हैव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और वो इंप्रूव होगी स्पिरिचुअलिटी से, वो इंप्रूव होगी मेडिटेशन से। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना है, अर्थात मेरे एक एक विचारों का प्रभाव विश्व में फैल रहा है, पड़ रहा है। इंग्लिश में कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, सुना है ये शब्द, आकाशिक रिकॉर्ड्स। हिटलर ने क्या कहा था, अब भी आकाश में है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, अब भी आकाश में। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कहा था, वो भी आकाश में, रिकॉर्ड के रूप में, ऐसा कहा जाता है। एवरीथिंग इज प्रिजर्व्ड हियर इन द एटमॉस्फियर, नथिंग गोज। हमारे मुख से निकला हुआ एक एक शब्द कहीं ना कहीं है। क्या निकल रहा है सारे दिन भर, व्यर्थ, निगेटिव, विकार, संसार की व्यर्थ बातें या कुछ आत्म उन्नति की बातें। हम जब बोले तो लोगों को भगवान की याद आ जाए, हम जब बोले तो हमारे शब्द शब्द में प्यूरिटी के प्रकंपन हो। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा था कि आपने जो भाषण दिया वो इतना प्रभावशाली कैसे था, उस सभा में इतने सारे लोग बैठे थे। उन्होंने कहा, दैट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। आई हैव नॉट अलाउड माई माइंड टू हैव अ सिंगल सेक्सुअल थॉट इन माई लाइफ। ये उनका उत्तर था। इस संस्था की संस्थापक दादी प्रकाशमणि थे, जूरिस्ट की सभा थी, सारे वकील बैठे थे और दादी ने प्रश्न पूछा था, कौन ऐसा है जिसने एक बार भी झूठ नहीं बोला, हाथ खड़े करो। सारे वकील लोग बैठे थे और दादी ने कहा, आपके सामने मैं कहती हूं कि मैंने अपने जीवन में कभी एक बार भी झूठ नहीं बोला। ये पावर थी दादी प्रकाशमणि की, रिस्पॉन्सिबल हूं। उसके बाद है सिंप्लिसिटी, एस, अपने जीवन में सादगी लानी है, घर भी सिंपल, हर चीज सिंपल, शरीर को कितना भी सजाओ, बाहर ही श्रृंगार अल्पकाल का है, सच्चा सौंदर्य जो है वो है आत्मा का प्यूरिटी, आत्मा का प्यूरिटी का सादगी हो जीवन में, हर चीज में सिंपल, बहुत ऊंचा नहीं बहुत नीचा भी नहीं। लोग ये भी ना कहे तुम फकीर हो जैसे हो, भिखारी हो, ये भी नहीं, और ऐसे भी नहीं इतने थाट बाट, वो भी नहीं, मध्यम, ना अति ऊंचम ना अति नीचम। बुद्ध ने अपने मार्ग को कहा मच्छिन निकाय, द मिडल पाथ, अति सर्वत्र वर्जते, अति में नहीं जाना है, हर बात में बैलेंस, मिडल। उसके बाद है ट्रस्टी, बीसवा ट्रस्टी, ट्रस्टी बनकर रहना है। जैसे बैंक का मैनेजर होता है, पैसे गिनता है पर उसको पता है ये पैसे मेरे नहीं, मेरी सैलरी मिलने वाली है, उस तरह ही संसार में भी ऐसे रहो जैसे कि ट्रस्टी है, ये सब उसका है। सूफी गीत है, राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है, तेरे पास बिजलियां है, तेरे पास बिजलियां है, कब तेरी बिजली आ जाएगी और मेरे सब कुछ भस्म कर देगा, तबाह कर देगा, राजी तेरी रजा में इसलिए, तेरे पास बिजलियां है मेरे पास आशियाना। थाई विल शैल बी डन, होई सोई जो राम रचि राखा, वो एक समर्पण भाव जीवन में, वो एक ट्रस्टीशिप का एटीट्यूड कि मेरा कुछ भी नहीं है, ओनरशिप नहीं है। यहां पे आपने देखा होगा ऑल एंड नन है, हर एक को पूछो कहता है ये सब कुछ मेरा है, जैसे अभी अभी भाई जी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, सब मेरा है और यहां का कुछ भी मेरा नहीं है, दोनों चीजें है, यहां का कुछ भी मेरा नहीं है और सब कुछ मेरा ही है, वो भाव सब उसका है, मुझे संभालने के लिए दिया हुआ है। आई एम जस्ट अ ट्रस्टी। एंड लास्ट यूनिटी, 21वीं यूनिटी, जब हम ये जानेंगे कि सब 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 हम जो है, हम सब एक बीज से जुड़े हुए हैं, हम सब एक बीज से जुड़े हुए हैं। वो तब होगा जब हमें अपने पिता का पता चलेगा कि वो परमात्मा मेरा पिता है, ये संसार की सभी आत्माएं उसकी संतान है, हम सब एक है। ये बहुत ऊंची बातें हैं परंतु यही सत्य है, और जब तक ये जीवन में नहीं आएगी तब तक जीवन में परिवर्तन भी नहीं होगा। हमारे अपने जीवन में एक लास्ट बात, समय पूरा हो रहा है, जब हम 12th स्टैंडर्ड में थे, हमारे पिताजी हमारे लिए किताब लेकर आए मेडिकल कॉलेज की, एंट्रेंस की, सेवाग्राम की। उस किताब का नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, M.K. गांधी। हमने वो किताब पढ़ी इसलिए क्योंकि एग्जाम देनी थी, क्योंकि सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए, क्योंकि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा चौथा सब्जेक्ट था गांधीयन थॉट्स। और जैसे वो किताब पढ़ने लगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, उस किताब में जो जो लिखा था हमको लगा जैसे हमारे जीवन का है। लेखक ने लिखा, मैंने चोरी की, मैंने पाप किया, मैंने झूठ बोला, मैंने मांसाहार किया, बीड़ी पी, सिगरेट पिया, चोरी की, हमको लगा हमने भी ऐसा किया है। और वो किताब पढ़ते 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 अगले 6 मास हम मौन में चले गए। पिताजी को चिंता हुई, इसको क्या हो गया, क्यों ये बात नहीं करता है किसी से। ऐसी क्रांति हो गई कि जीवन जो संसार की ओर जा रहा था एकदम भगवान की ओर टर्न हो गया, और वहां से खोज चालू हुई। फिर उसके बाद में 4.5 साल MBBS के भगवान की खोज में बीते, एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई, एक तरफ भगवान की खोज। MBBS पूरा हुआ, उसके बाद में इंटर्नशिप, वो पूरा हुआ, उसके बाद में नागपुर में थे अपने भाई के पास, वहां से फिर से भगवान की खोज चालू हुई। और संसार की लगभग ऐसी कोई संस्था नहीं होगी, कोई संस्था नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई क्रीड नहीं जहां हम नहीं गए. एवरी इंस्टीट्यूशन, रिलेटिव रिलीजन, रिलेटिव कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स, एवरी एस्टर्न वेस्टर्न फिलोसॉफी, सेंट बर्नार्ड, सेंट पॉल, सेंट एसीसी, इधर हिंदू धर्म, तुलसीदास, एकनाथ, चैतन्य, सारे 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 ईस्टर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, और लास्ट में ऐसा वैराग जागा और उस अवस्था में हम यहां आए थे. और यहां जो आए और इस वातावरण में जो आए, एक नया जन्म हो गया. तो ये जो स्थान है परमात्मा अवतरण भूमि है, शक्ति की भूमि है, यहां से आकर परिवर्तित होकर ही जाना है. तो ऐसी स्पिरिचुअल टी पार्टी जिसमें 21 टाइप्स ऑफ टी जो अभी हमने देखे उसका अनुभव करना है. सभी फिर से अलर्ट होकर बैठेंगे. लास्ट स्थिरता. सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, कोई आवाज नहीं, मन शांत, आत्मिक स्थिति, देह के भव्य भाल पर विराजमान, चेतना की वह तरंग मैं हूं. सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, आंखें बंद, आंखें बंद, मेरे दोनों हाथों से शक्तिशाली ऊर्जा इन दो आत्माओं को जा रही है। और पवित्रता की ऊर्जा इन दोनों से मुझ में समा रही है। ऊर्जा का एक वर्तुल शक्ति का अनुभव मौन वायुमंडल की सारी ऊर्जा मुझ में आ रही है। संपूर्ण शरीर में हीलिंग एनर्जी का प्रवेशता आत्मा शक्तिशाली हो रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। ऊर्जावान हूं, शांत हूं, अंग अंग शीतल, आंखें खोलेंगे और नीचे बैठेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। एंजॉयड द पार्टी? सभी के चेहरों से लग रहा है सभी ने बहुत एंजॉय किया। डॉक्टर सचिन भाई का बहुत 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 थैंक। ऐसी पार्टी ना कभी देखी ना सुनी ना अटेंड की। नयापन लगा, नवीनता थी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा,